तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जरा सोचिए कि आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो जिसे मतलब तोड़ना लगभग असंभव है।
हाँ बिल्कुल।
और उसे साइन करने का जो तरीका है वो इतना डरावना है कि सच कहूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई स्टैम्प पेपर नहीं है यहाँ, ना कोई नॉर्मल सिग्नेचर।
एक जानलेवा अनुष्ठान।
बिल्कुल। आज के हमारे जो स्रोत हैं वो हमें कुछ ऐसे ही प्राचीन अनुबंध या कह लें कवनेंट्स की ओर ले जाते हैं।
आज की इस गहरी चर्चा में हम डॉक्टर रॉबर्ट विनॉय के ओल्ड टेस्टामेंट इतिहास के व्याख्यानों में गहराई से उतरने वाले हैं।
सही कहा। और हमारा मिशन यही है कि हम जेनेसिस के उन पन्नों में जाएं जहां अब्राहमिक अनुबंध और खतना जैसी प्रथाओं के इर्द गिर्द बुने गए रहस्य छिपे हैं।
हाँ, और सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये महज कोई पुरानी इतिहास की क्लास नहीं है। ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ विश्वास और मानवीय संघर्षों की कहानी कहते हैं जो हमारे लिए मतलब आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगती है वो ये है कि जब हम इन स्रोतों को देखते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ बल्कि उसके पीछे का बड़ा अर्थ क्या था वो समझाते हैं।
हाँ, तो इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ये अनुबंध असल में शुरू हुआ था। जेनेसिस की वो कहानी, वो 15वां अध्याय। स्रोत इसे एक बेहद रहस्यमयी और डरावने दृश्य की तरह बताते हैं।
बहुत ही खौफनाक दृश्य था वो।
मतलब जानवरों को बीच से काटा गया है, उनके शरीर के दो हिस्से आमने सामने रखे गए हैं और उन खून से सने टुकड़ों के बीच से एक धुएं वाली भट्टी और एक जलती हुई मशाल गुजर रही है। मतलब ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं लग रही। इसके पीछे क्या तर्क था?
डॉक्टर वेनॉय इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो मेरेडिथ क्लेन की एक किताब का जिक्र करते हैं, बाय ओथ कंसाइंड। क्लेन बताते हैं कि ये उस समय की एक खास कानूनी प्रथा थी जिसे स्यूजेरीन वॉसल ट्रीटी कहा जाता था।
अच्छा, ये स्यूजेरीन वॉसल ट्रीटी क्या होती है?
मतलब जब कोई बड़ा राजा किसी छोटे राजा के साथ कोई समझौता करता था तो वो जानवरों को ऐसे ही काट कर उनके बीच से गुजरते थे।
बापरे।
हाँ, और इसका सीधा सा मतलब होता था कि अगर मैंने इस अनुबंध की शर्तें तोड़ी तो मेरा भी वही हाल हो जो इन जानवरों का हुआ है।
तो एक तरह से वो अपनी जान की बाजी लगा रहे होते थे।
बिल्कुल, मुझे भी इसी तरह काट दिया जाए, ये मतलब था इसका।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे कोई बैंक आपको कोई बड़ा लोन दे और गारंटी में आपके घर के बजाय वो अपना खुद का बैंक ही गिरवी रख दे।
बहुत सही उपमा है ये।
क्योंकि इस कहानी में हैरान करने वाली बात ये है कि अब्राहम उन टुकड़ों के बीच से नहीं गुजर रहा, वो तो गहरी नींद में है। ईश्वर खुद उस मशाल और भट्टी के रूप में गुजर रहे हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। और इसी को क्लेन स्वयं को श्राप देने या कहें कि सेल्फ मैलेडिक्शन का प्रतीक मानते हैं। प्राचीन दुनिया में ये पूरी तरह से उल्टी बात थी।
उल्टी बात कैसे?
मतलब आमतौर पर जो कमजोर पक्ष होता है, इंसान होता है, वो कस्में खाता है कि मैं वफादार रहूंगा। पर यहाँ ईश्वर खुद, जो पूरी दुनिया के रचयिता हैं, वो खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर ये वादा टूटा तो विनाश उनका होगा।
वाह। ताकि मनुष्य को पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल सके, ये ईश्वर का खुद को श्राप के अधीन कर लेना था।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि ईश्वर खुद को ऐसा श्राप दे रहे हैं। और ये वादा था किस चीज का? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये एक जमीन का वादा था, है ना?
हाँ, एक बहुत बड़े जमीन के टुकड़े का, मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेट्स नदी तक की जमीन। पर डॉक्टर वेनॉय बताते हैं कि ये वादा रातों रात पूरा नहीं हुआ था।
तो इसमें कितना समय लगा?
कई पीढ़ियां लग गईं। जब जोशुआ के नेतृत्व में वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ हिस्सा लिया, पर इसकी पूरी ऐतिहासिक सच्चाई हमें बहुत बाद में राजा डेविड और सुलोमन के समय में जाकर देखने को मिलती है।
अच्छा, तब जाकर वो जमीन पूरी तरह मिली। बिल्कुल। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सुलोमन का शासन यूफ्रेट से लेकर मिस्र तक फैल गया था।
लेकिन स्रोतों में एक जगह ये भी जिक्र है कि ये केवल जमीन की बात नहीं थी। जेरेमिया के हवाले से कुछ प्रकृति से जुड़ी बात भी है।
हाँ, डॉक्टर वेनॉय इसे एक कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय संदर्भ देते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे, प्रकृति रहेगी, तब तक ये राष्ट्र रहेगा।
मतलब ये वादा प्रकृति के नियमों के साथ गूंथ दिया गया था।
मतलब जब तक सूरज चांद है ये वादा नहीं टूटेगा।
सही कहा।
तो उस डरावने अनुष्ठान और जमीन के इतने बड़े वादे के बाद कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। हम 24 साल आगे जाते हैं। अब्राम, जिन्हें तब अब्राम कहा जाता था, वो अब 99 साल के हो चुके हैं।
हाँ, 24 साल का इंतजार।
और वादे का इंतजार अब भी जारी है। अगर पहले की घटना पूरी तरह से ईश्वर की मुफ्त कृपा थी तो अब 99 साल की उम्र में अचानक ईश्वर एक नई पहचान और एक शारीरिक मोहर की बात क्यों करते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। 99 साल की उम्र में अब्राहम शायद उम्मीद छोड़ चुके थे और ठीक इसी समय ईश्वर आते हैं और सबसे पहले उनका नाम बदलते हैं, अब्राम से अब्राहम कर देते हैं।
दोनों नामों में क्या फर्क है?
अब्राम का मतलब है ईश्वर महान है, लेकिन अब्राहम का मतलब है कई राष्ट्रों का पिता।
एक मिनट जरा सोचिए, एक 99 साल का निसंतान व्यक्ति और उसे कई राष्ट्रों का पिता कहा जा रहा है?
बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। और इसी के साथ ईश्वर कहते हैं, मेरे सामने चलो और पूर्ण बनो।
पूर्ण बनो मतलब परफेक्ट बनो। क्या इंसान कभी पूरी तरह से पूर्ण हो सकता है?
नहीं, यहाँ पूर्ण का वो मतलब नहीं है जो हम आज समझते हैं। डॉक्टर वनॉय समझाते हैं कि इसका अर्थ नैतिक रूप से 100% पाप मुक्त होना नहीं था। इसका मतलब था एक संपूर्ण और आज्ञाकारी जीवन जीना, एक ऐसा दिल जो वफादार हो।
समझ गया, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। स्रोतों में इस बात को लेकर जो अकादमिक बहस है, मैं उस पर आना चाहता हूँ।
हाँ, सोर्स क्रिटिक्स वाली बात।
बिल्कुल, जो स्रोत आलोचक हैं वो कहते हैं कि वो जो जानवरों वाला 15वां अध्याय था, जिसे वो जे डॉक्यूमेंट कहते हैं, और ये जो 99 साल वाला 17वां अध्याय है पी डॉक्यूमेंट, ये दोनों असल में अलग अलग लेखकों की कहानियां हैं। क्या आलोचकों का ये सोचना स्वाभाविक नहीं है कि ये कहानियां बाद में जोड़ तोड़ के लिखी गई होंगी? ये जे और पी का क्या चक्कर है?
तो जे का मतलब है याहविस्ट परंपरा, जहां कहानियों और वादों पर ज्यादा जोर है, और पी का मतलब है प्रीस्टली परंपरा, जो अनुष्ठानों, तारीखों और खतने जैसी प्रथाओं पर जोर देती है।
अच्छा,
तो आलोचकों को लगता है कि क्योंकि पहले वाले में ईश्वर सब जिम्मा ले रहे हैं और दूसरे में अचानक नियम आ गए, तो ये एक कहानी नहीं हो सकती। उन्हें लगता है कि किसी ने बाद में इन्हें जोड़ दिया है।
सुनकर तो ये काफी लॉजिकल लगता है। तो हम इसे केवल एक दिलासा या वादे का नवीनीकरण कैसे मान लें, जैसा कि डॉक्टर वेनॉय कहते हैं?
देखिए, डॉक्टर वेनॉय का तर्क बहुत ही मानवीय है। वो कहते हैं कि 24 साल बहुत लंबा समय होता है, इंसान का विश्वास डगमगा जाता है।
हाँ, वो तो है।
तो ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि उसी वादे का रिन्यूअल है। ऐतिहासिक वादे समय के साथ विकसित होते हैं। ईश्वर उस संघर्ष कर रहे इंसान के पास आते हैं, उसे दिलासा देते हैं और वादे को उसके शरीर पर एक मोहर के रूप में दर्ज करते हैं। मोहर।
और यहीं से खतना यानी सर्कमसिजन की बात आती है। नाम बदलने के साथ ही वादे को शरीर पर उकेरने के लिए एक बेहद दर्दनाक और स्थायी भौतिक प्रतीक।
बिल्कुल, और ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं थी।
हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसे नाम मानने की सजा थी अपने लोगों से काट दिया जाना। इसका असल में क्या मतलब था?
प्राचीन समाज में इसका मतलब सिर्फ सामाजिक बहिष्कार नहीं था, इसका अर्थ सीधे मौत या ईश्वर द्वारा विनाश होता था। ये गुलामों के लिए भी अनिवार्य था। और मोसेस वाली कहानी तो और भी हैरान करने वाली है।
हाँ, एक्सोडस की वो घटना, मतलब मोसेस, जिसे ईश्वर ने खुद चुना था लोगों को आजाद कराने के लिए, उसी को ईश्वर मारने वाले थे सिर्फ इसलिए कि उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपने सही स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो आपको स्कूल से निकालने के बजाय मौत की सजा दे दी जाए।
सुनने में ऐसा ही लगता है।
क्या ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है?
देखिए, इसे ऐसे समझिए, मोसेस उस अनुबंध का मध्यस्थ था, वो एक राजदूत की तरह था।
अच्छा,
अगर कोई राजदूत राजा की आधिकारिक मोहर ले जाने से ही मना कर दे तो वो अपने पूरे मिशन को ही नकार रहा है। ईश्वर यह दिखा रहे थे कि ये नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, ये जीवन मरण का प्रश्न थे।
समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हम कहें कि विश्वास पहले आता है तो एक शारीरिक अनुष्ठान को इतना जरूरी क्यों बना दिया गया?
इसका जवाब इतिहास में है। खतना केवल इज़राइल में नहीं होता था, मिस्र, एदोम, अमोन के लोग भी ये करते थे।
अच्छा, मुझे लगे सिर्फ इज़राइलियों की पहचान थी।
वो एक नया आध्यात्मिक अर्थ दिया। इसका असली उद्देश्य था दिल का खतना।
दिल का खतना मतलब?
मतलब अंदर से बुराई की सफाई, इंसान के स्वार्थ और विद्रोह को खत्म करना।
तो बाहरी निशान सिर्फ एक प्रतीक था।
बिल्कुल, और न्यू टेस्टमेंट में पॉल इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इब्राहिम को धर्मी उनके खतने के कारण नहीं माना गया था।
तो किस लिए माना गया था?
उनके विश्वास के कारण, जो खतने से कई साल पहले ही था।
ओह, तो विश्वास पहले आया, मोहर बाद में लगी।
हाँ, डॉक्टर वेनॉय इसे न्यू टेस्टमेंट के बैप्टिज्म से भी जोड़ते हैं। पानी का स्नान या शरीर का निशान तब तक बेमानी है जब तक अंदर सच्चा विश्वास ना हो।
वाह, तो वादे, नए नाम और इस दर्दनाक शारीरिक मोहर के बाद आखिरकार वो चमत्कार होता है, इसाक पैदा होता है।
हाँ, जिस बेटे का दशकों से इंतजार था।
लेकिन अब कहानी अपने सबसे बड़े और मैं कहूंगा सबसे क्रूर विरोधाभास पर आ जाती है। ईश्वर उसी बेटे की बलि मांगते हैं।
जेनेसिस की सबसे बड़ी परीक्षा।
सच में ये सुनकर ही अजीब लगता है, ईश्वर ऐसा क्यों करेंगे?
यहाँ हमें परीक्षा और प्रलोभन यानी टेस्ट और टेम्पटेशन के बीच का अंतर समझना होगा। डॉक्टर वैनोय बताते हैं कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, प्रलोभन नहीं देते।
दोनों में क्या फर्क है?
प्रलोभन शैतान देता है, जैसे अय्यूब की कहानी में, ताकि इंसान गिरे, लेकिन ईश्वर परीक्षा लेते हैं ताकि विश्वास मजबूत हो।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्रीय संकट खड़ा हो जाता है।
आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं?
वो जो ईश्वर कहते हैं कि चूंकि तुमने ये किया है इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा।
हाँ।
तो इस सब का असल में मतलब क्या है? अगर ईश्वर सब जानते हैं और कृपा भी उन्हीं की है, तो इस क्रूर परीक्षा की जरूरत ही क्या थी? क्या अब्राहम ने अपने कर्मों से ये आशीर्वाद कमाया था?
ये बहुत गहरा सवाल है।
क्या ये ब्रिज के स्ट्रेस टेस्ट की तरह है, जहां इंजीनियर को पता है कि ब्रिज वजन सह लेगा, लेकिन दुनिया को साबित करने के लिए वो भारी ट्रक उस पर से गुजारता है?
स्ट्रेस टेस्ट वाली बात कुछ हद तक सही है, लेकिन वो जो शब्द है ना चूंकि, इसने बहुत से विद्वानों को परेशान किया है।
हाँ, क्योंकि अगर कर्म से आशीर्वाद मिला तो मुफ्त कृपा कहाँ गई?
बिल्कुल, और यहीं पर जॉन कैल्विन का स्पष्टीकरण काम आता है। कैल्विन कहते हैं कि ईश्वर इसे एक इनाम जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये कोई कर्ज नहीं है जो ईश्वर चुका रहे हों।
तो फिर क्या है?
ये अब्राहम का कर्म नहीं था जिसने ईश्वर की ग्रेस पैदा की, बल्कि ईश्वर की ग्रेस ही थी जिसने अब्राहम को ऐसा करने की शक्ति दी।
अच्छा, मतलब ईश्वर ने ही वो हिम्मत दी कि वो अपने बेटे की बलि देने को तैयार हो जाए।
हाँ, ईश्वर असल में अपने ही दिए हुए उपहार को इनाम दे रहे थे।
ये तो ईश्वर की संप्रभुता और मानव की जिम्मेदारी का बहुत बड़ा रहस्य हो गया।
बिल्कुल, इसे ईसा मसीह के दो स्वभावों या धर्म ग्रंथों की प्रेरणा से जोड़ा गया है। आप इसे पूरी तरह तर्क से नहीं समझ सकते।
100% ईश्वर की कृपा और 100% इंसान का कर्म, दोनों एक साथ।
सही कहा। और जरा कैल्विन के नजरिए से अब्राहम के मानसिक संघर्ष के बारे में सोचिए।
मैं तो सोचकर ही से हर जाता हूँ, एक पिता के तौर पर।
हाँ, एक तरफ ईश्वर का वादा है कि इसहाक के जरिए राष्ट्र बनेगा, और दूसरी तरफ ईश्वर का आदेश है कि इसहाक को मार दो।
दोनों बातें आपस में पूरी तरह टकरा रही हैं।
बिल्कुल, और यही अब्राहम का सबसे बड़ा संघर्ष था।
तो इस पूरी चर्चा ने हमें क्या दिखाया? एक धुएं वाली भट्टी के डलावने वादे से लेकर नाम बदलने, एक दर्दनाक शारीरिक मोहर, और अंत में एक पिता के सबसे बड़े मानसिक संघर्ष तक।
हाँ, और ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, मानव तर्क से परे एक गहरा आध्यात्मिक विश्वास।
सुनने वालों के लिए इसका क्या अर्थ है? हमारी अपनी जिंदगी में जब चीजें विरोधाभासी लगती हैं, जैसे अब्राहम के लिए वादा और आदेश टकरा रहे थे, तो क्या हम उस बड़े अर्थ, उस बिगर पिक्चर को देख पाते हैं?
यही तो असली परीक्षा है।
बिल्कुल, और इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर हमने ज्यादा बात नहीं की। जाते जाते एक बात सोचने के लिए, न्यू टेस्टामेंट का एक हिस्सा कहता है कि अब्राहम ने इसहाक की बलि देने का कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं।
वाह,
जरा सोचिए, विज्ञान और तर्कों से सदियों पहले की उस दुनिया में जहां जीवन और मृत्यु को अंतिम सत्य माना जाता था, एक व्यक्ति के मन में मृत्यु के बाद जीवन यानी रेजरेक्शन का इतना पुख्ता यकीन कैसे आ गया?
ये सच में हैरान करने वाला है।
क्या प्राचीन लोगों की वास्तविकता को देखने की समझ हमारी आज की आधुनिक समझ से कहीं ज्यादा गहरी थी? ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।